आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ये क्लास 10th के साइंस का 8th चैप्टर है और आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा है। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। हम देख रहे थे कि बाकी ऑर्गेनिजम्स में हमने पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यूनिसेलुलर में किस तरीके से होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में किस तरीके से होता है, तो हम लोग लास्ट में ह्यूमन बींग्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है वो सीख रहे थे। तो यहाँ पर हमने ये देखा था कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, गेमीट्स का फ्यूजन होना पड़ेगा, मेल गेमीट का और फीमेल गेमीट का, इनके फ्यूजन से ही जाइगोट बनेगा और जाइगोट एम्ब्रियो बना करके फर्दर डिविजन करके वो एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में, तो इसीलिए इस प्रोसेस को करवाने के लिए बॉडी में बहुत सारे चेंजेस करवाए जाते हैं। जब हम लोग टीनेज ईयर्स में अपने होते हैं तो उस वक्त हमारी बॉडी ग्रो करती है और भी बहुत सारी चेंजेस हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं, सच एज ग्रोथ होने लगती है आर्मपिट्स में, ग्रोइन एरिया में, जेनिटल एरियाज में। मेल्स में कुछ अलग चेंजेस दिखते हैं, उनकी जो वॉइस होती है वो चेंज हो जाती है, साथ में उनके अपर लिप्स में मुस्टाच आने के लिए छोटी छोटी हेयर ग्रोथ होने लगती है, बियर्ड की हेयर ग्रोथ होने लगती है। फीमेल्स में चेस्ट ग्रो करने लगता है, उनकी ब्रेस्ट एनलार्जमेंट देखी जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस हम देखते हैं जो इंडिविजुअल्स में आते हैं ड्यूरिंग देयर प्यूबर्टी ईयर्स और टीनेज ईयर्स। जो आपके टीनेज ईयर्स होते हैं उसी को हम लोग और भी नामों से जानते हैं, जैसे कि प्यूबर्टी का पीरियड कह सकते हैं या फिर एडोलेसेंस का पीरियड कह सकते हैं। और इस वक्त बॉडी जो है वो धीरे धीरे करके सेक्सुअली मैच्योर हो रही होती है। उसके बाद हमने देखा था कि जब पूरी की तरह से जो इंडिविजुअल्स हैं वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं तो उनमें गेमीट्स का फॉर्मेशन होने लग जाता है, मेल्स के अंदर मेल गेमीट का और फीमेल्स के अंदर फीमेल गेमीट का। और जैसे एनिमल्स मेटिंग करते हैं उसी तरीके से ह्यूमन बींग्स को भी मेटिंग करनी होती है और तभी मेल इंडिविजुअल्स जो हैं वो मेल गेमीट्स को ट्रांसफ़र करते हैं इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल इंडिविजुअल्स। और फीमेल गेमीट्स जो होते हैं वो फीमेल बॉडी के अंदर ही रहती है, मेल गेमीट को वहाँ पहुँचना होता है, फ्यूजन होता है फीमेल बॉडी के अंदर ही। फीमेल गेमीट और मेल गेमीट का जो फ्यूजन होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है और फर्दर डेवलपमेंट जो होती है वो भी फीमेल बॉडी के अंदर ही होती है। तो आपने भी, आपको भी इतना पता है कि माँ की कोख में ही बच्चा पलता है, यानी कि जो बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है वो फीमेल इंडिविजुअल की बॉडी के इनसाइड होता है। उसके बाद बच्चों हमने ये भी बात की थी कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज डिफरेंसेस इन ग्रोथ पैटर्न्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस इन मेल्स एंड फीमेल्स। मेल्स और फीमेल्स में जो ये अंतर देखने को मिलता है ग्रोथ पैटर्न्स का ड्यूरिंग एडोलेसेंस पीरियड, तो ये हम लोगों को अंतर क्यों दिखता है? तो अंतर इसलिए दिखता है सो दैट वी विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। जब आप मेल्स और फीमेल्स में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे तभी आप फाइनली जा करके रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो बेसिकली मेल्स और फीमेल्स को अंतर करने के लिए, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ही उनमें डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न्स दिखते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी और एडोलेसेंस, प्लस जो उनके अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं वो विजिबल चेंजेस हैं। तो इसलिए हम लोगों को ये भी सिग्नल मिलता है दैट दोज इंडिविजुअल्स आर गेटिंग सेक्सुअली मच्योर्ड एंड दैट दे आर अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ गेटिंग सेक्सुअली मच्योर्ड। सो हमने बात की थी कि ये बहुत से चेंजेस जो हैं वो इंडिविजुअल्स के अंदर देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंस पीरियड। उसके बाद हम लोगों को आज की क्लास में पढ़ना था अबाउट द सिस्टम्स विच आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस। सो हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना था और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना था। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप लोग आ जाओ पेज नंबर 137 पर और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्लस आप लोगों को यहाँ पर फिगर भी दिया गया है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, फिगर 8.10 ऑन पेज नंबर 137। तो इसको भी आप लोग देखते रहो क्योंकि जो आपको समझाया जाएगा तो आपको डायग्राम को रेफर करना होगा, तो सुनते भी रहो साथ के साथ डायग्राम भी देखते रहो, मैच कराते रहो जो जो बताया जा रहा है, तो उससे आप लोग और अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर देखो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें कुछ पार्ट्स तो ऐसे हैं, एक पार्ट ऐसा है जो कि गेमीट्स का फॉर्मेशन करने में इन्वॉल्व है, बाकी के जो पार्ट्स हैं इसमें वो क्या करते हैं, बेसिकली जो गेमीट्स बन चुके हैं उनका ट्रांसफर कराने के लिए इन्वॉल्व है फ्रॉम दी पार्ट वेयर गेमीट इज फॉर्म टू द फीमेल इंडिविजुअल्स बॉडी। तो यहाँ पर गेमीट्स जो बनते हैं वो कहीं और बनते हैं और वहां से उन गेमीट्स को ट्रांसफर किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, फीमेल इंडिविजुअल की बॉडी में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कहाँ पर गेमीट्स का फॉर्मेशन होता है। तो टेस्टिस जो होते हैं वहां पर गेमीट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसको स्क्रोटम कहा गया है और उसके अंदर ही टेस्टिस है। तो जो मेल इंडिविजुअल्स होते हैं उनके पास दो स्क्रोटम होते हैं और दोनों ही स्क्रोटम के अंदर एक एक टेस्टिस होते हैं। जो ग्लोब्यूल टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है वही टेस्टिस है और वहीं पर से टेस्टिस से ही जो मेल गैमीट्स है वहां पर उनका फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर टेस्टिस को एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर यानी कि स्क्रोटम में बॉडी के बाहर हैंगिंग लाइक बनाया गया है। वो बॉडी के बाहर हैंग करता हुआ सा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि बॉडी टेम्परेचर जो होती है उससे कम टेम्परेचर चाहिए हमारे मेल गैमीट्स को ताकि वो बन पाए। अगर इतना ज्यादा टेम्परेचर उन्हें मिलेगा तो गैमीट्स जो होते हैं दे डाई, इसीलिए उनको थोड़ा कम गर्म तापमान मिले। इसीलिए स्क्रोटम जो होता है इट इज सिचुएटेड आउटसाइड द बॉडी और हैंगिंग स्ट्रक्चर इसका होता है और इट हैंग्स इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर ये होता है और बॉडी के आउटसाइड सिचुएटेड होता है बिकॉज इट रिक्वायर्स लोअर टेम्परेचर देन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। अभी आप लोगों ने पढ़ा हुआ था कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में कि जो टेस्टिस होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन का भी सिक्रेशन करते हैं। जो मेल हॉर्मोन्स होते हैं उसका सिक्रेशन भी टेस्टिस करते हैं और टेस्टोस्टेरोन से ही आप लोगों की बॉडी के अंदर जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो टेस्टोस्टेरोन ही उन सब चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और टेस्टिस उनको प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमीट्स एंड ऑल्सो टू शो दी चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन मेल इंडिविजुअल्स। तो हमने यहाँ पर तो देख लिया कि जो बन रहे हैं टेस्टिस वो कहाँ बन सॉरी जो बन रहे हैं मेल गैमीट्स वो कहाँ बन रहे हैं, टेस्टिस के अंदर बन रहे हैं। अब यहाँ पर मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन हो चुका तो अब इन्हें ट्रांसफर करने की बारी आएगी फ्रॉम द मेल इंडिविजुअल्स बॉडी टू द फीमेल इंडिविजुअल्स बॉडी। तो यहाँ पर जो इसका ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है, जो गैमीट्स बन चुके हैं वो वास्ट डिफरेंस आप लोगों को दिख रहा होगा टेस्टिस से ही निकलता हुआ एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इसे वास्ट डिफरेंस कहते हैं और ये वास्ट डिफरेंस के थ्रू ही गैमीट्स जो हैं वो मूव कर पाते हैं। उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो वास्ट डिफरेंस है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और इस ट्यूब के साथ आगे जा कर के एक और ट्यूब कनेक्ट हो जाती है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से निकल रही है और ये ट्यूब का नाम है कॉमन ट्यूब जो बन जाती है दोनों ट्यूब्स के मिलने से। एक तो वास्ट डिफरेंस होता है वहां पर ट्यूब और दूसरी ट्यूब जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है, यूरिनरी ब्लैडर से आ रही है। इन दोनों ट्यूब के मिलने से एक नए ट्यूब का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम होता है यूरेथ्रा। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि कॉमन पैसेज है। किस चीज के लिए कॉमन पैसेज है, जो हमारे मेल गैमीट्स हैं उनके मूवमेंट के लिए भी कॉमन पैसेज है। वो मेल इंडिविजुअल की बॉडी से जहाँ से बाहर निकलेंगे वो जगह सेम है और जहाँ से जो मेल इंडिविजुअल्स हैं यूरिनेट करते हैं वो जगह भी सेम है। तो यूरिन की पैसेज कराने के लिए और जो मेल के गैमीट्स हैं उसकी पैसेज करवाने के लिए सेम ही वहां पर एक पैसेज दिया गया है, कॉमन पैसेज है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग कुछ ग्लैंड्स देख पा रहे होंगे जैसे कि प्रोस्ट्रेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल्स। ये ग्लैंड्स हैं, इनका क्या काम है, इनका काम है कुछ सीक्रीशंस को डालना। जैसे ही जो मेल गैमीट्स हैं मूव कर रहे होंगे इन ट्यूब्स के अंदर, पहले तो वास्ट डिफरेंस के अंदर वो अकेला मूव कर रहा था, उसके बाद कॉमन पैसेज बन गया यूरेथ्रा। तो यहाँ पर जैसे जैसे गैमीट्स मूव करते हैं वैसे वैसे उनके ऊपर कुछ सिक्रीशंस डाल दी जाती हैं बाय दीज ग्लैंड्स, सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा कुछ सिक्रीशंस डाल दी जाती हैं, जैसे कि म्यूकस, कुछ स्लाइमी चीज जिससे कि पैसेज जो है वो इजी हो जाए, स्मूथ हो जाए। जो मेल गैमीट्स हैं, मेल गैमीट्स का नाम यहाँ पर स्पर्म्स है, तो यहाँ पर जो स्पर्म्स हैं वो सिक्रीशंस जो आ रहे हैं ग्लैंड्स के साथ प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से या फिर सेमाइनल वेसिकल्स की जो सिक्रीशंस हैं वो फ्लूइड वाले सिक्रीशंस होते हैं। तो उसमें जब स्पर्म्स होते हैं तो इस फ्लूइड के साथ स्पर्म को होने को एक नया नाम दिया जाता है, सीमेन कहा जाता है। तो सीमेन बेसिकली क्या है, सीमेन है फ्लूइड प्लस स्पर्म्स। तो जो सिक्रीशंस हैं बेसिकली जो प्रोस्टेट ग्लैंड से या फिर सेमाइनल वेसिकल्स से आ रहे हैं वो सारी सिक्रीशंस प्लस स्पर्म्स का जो कंपोजिट जो मिला जुला स्ट्रक्चर है उसे हम सीमेन कहते हैं। ये जो सीक्रीशन है जो ग्लैंड से आ रही है, ये जो सीक्रीशंस वहां पर होती हैं, ये सीक्रीशंस स्पर्म्स की मूवमेंट को तो स्मूथ करती ही हैं, साथ में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का भी काम करती हैं। स्पर्म्स क्या है? स्पर्म्स बेसिकली मेल गैमीट्स है। देखने में ये बहुत टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनमें एक बहुत बड़ी सी टेल होती है, पतली सी टेल होती है, जिसकी वजह से ये बहुत तेज मूवमेंट कर पाते हैं। और इसी टाइनी स्ट्रक्चर के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल भी होता है, जिसके अंदर उसे इन्फॉर्मेशन कैरी करना है जो नए इंडिविजुअल को दिया जाएगा ताकि उसका फॉर्मेशन हो सके। और बेसिकली टेल का क्या फंक्शन है? मूवमेंट देने का। और ये जो मूवमेंट होनी चाहिए ये कैसी होनी चाहिए? फ्रॉम द टेस्टिस टूवर्ड्स द फीमेल इंडिविजुअल्स बॉडी। तो इस तरीके की मूवमेंट जो मिलती है हमारे मेल गैमीट्स को, वो कैसे मिलती है? वो टेल की मौजूदगी की वजह से मिलती है। तो यहाँ पर ये सारी बातें जो हो गई, ये तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो गई। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर आप लोग डायग्राम देख पा रहे होंगे, पेज नंबर 137 पर ही है, फिगर 8.11, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें आप लोगों को दो स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, ओवरीज। ओवरीज जो है एक लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में है। इन्हीं ओवरीज के अंदर फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम एग भी कहते हैं। ओवरीज जो है वही एग का फॉर्मेशन करती है या फिर फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन करती है। जब लड़की का जन्म होता है उसी वक्त से ओवरीज जो होती हैं उस बच्ची के अंदर होती हैं, और उस ओवरीज के अंदर बहुत ही सारे इमेच्योर एग्स होते हैं। वो एग्स तो वहां पर होते हैं लेकिन वो मच्योर नहीं हुए होते। वो मच्योर तब होते हैं जब लड़कियां प्यूबर्टी की एज में आती हैं। तो उस वक्त जब प्यूबर्टी की एज रीच कर जाती हैं लड़कियां, तो उस वक्त एक एक एग जो है वो एक एक ओवरी के द्वारा हर महीने रिलीज किया जाता है। ओवरीज जो है एक एग बारी बारी से, एक एक ओवरीज हर महीने एक एग को रिलीज करती हैं। ये एग जो है वो ओवरीज से निकल करके जो आप लोगों को ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट, यहाँ से होते हुए वो वहां पर, पहले तो वो ओविडक्ट में पहुंचती है, जो एग होती है वो ओविडक्ट में पहुंचती है। उसके बाद अगर मेल गैमीट्स उसी वक्त पहुंच जाते हैं फीमेल बॉडी के अंदर जिस वक्त ओविडक्ट के अंदर एग है, यानी कि फीमेल गैमीट है, तो वहीं पर फ्यूजन हो जाता है। लेकिन अगर फ्यूजन नहीं होता तो जो ये एग है ये मूव करता हुआ ओविडक्ट से निकल करके कहाँ आ जाता है? यूट्रस में, जिसे हम वूम्ब यानी कि कोख भी कहते हैं। कोख इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर फ्यूजन हुआ है तो वो जो फ्यूज हुआ है वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? जाइगोट कहलाता है। तो जाइगोट जो है वो उसका फ्यूजन कहाँ पर हुआ था? ओविडक्ट के अंदर। तो वहां से वो मूव करता हुआ जाइगोट यूट्रस में आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फ्यूजन हो चाहे ना हो, फाइनली जो स्ट्रक्चर है उसको यूट्रस के अंदर आना है। पहले अगर फ्यूजन नहीं होता है तो उस केस में क्या होगा? जो एग है, सिंपली एग जो है वही आ जाएगा यूट्रस के अंदर। और वहां पर अगर फ्यूजन होता है तो क्या होगा कि जाइगोट जो है वो ओविडक्ट से मूव करता हुआ यूट्रस में आएगा। और भी बहुत से चेंजेस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं एग को रिसीव करने के लिए। उनमें से क्या चेंजेस है? हमारी बॉडी अज्यूम करके रखती है कि एग जो प्रोड्यूस किया गया है अगर उसका फ्यूजन हो जाता है तो उसको बचाने के लिए, उसको चोट ना लग पाए जाइगोट को, और उसको डेवलपमेंट देने के लिए जो यूट्रस की वॉल है, अंदर की जो वॉल है वो थिक हो जाती है, ब्लड वहां पर इकट्ठा हो जाता है। तो एक बहुत सारे ब्लड वेसल्स की थिक कुशन जैसी एक वॉल बन जाती है। ये बहुत मोटी सी एक वॉल होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि अगर फ्यूजन हुआ है तो उसे रिसीव करने के लिए, जाइगोट को रिसीव करने के लिए, और जाइगोट जो है वो इन्हीं वॉल्स में से जो ऊपर वाली वॉल है, जो आप लोगों को थोड़ी सी कर्व दिख रही है ऊपर साइड में, टॉप साइड में, उसमें जाकर के ये अटैच हो जाता है। जो जाइगोट होता है वो ऊपर वाली स्ट्रक्चर जो आप लोगों को यूट्रस के अंदर जो ऊपर वाला दिख रहा है हिस्सा, टॉप वाला, उसमें जाकर के अटैच हो जाता है। और फिर वहां से ही उसको न्यूट्रिशन मिलता है, फीमेल बॉडी से वो न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। लेकिन अगर वहां पर फ्यूजन नहीं हुआ है तो जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो वहां पर सिंपली एग जो है वो ओविडक्ट से मूव करता हुआ यूट्रस में आया है। लेकिन वहां पर फिर भी ये जो वॉल बनी है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर जो ब्लड्स की बनी है, वो तो बनी हुई होती है। लेकिन जैसे ही सिग्नल मिलता है कि वहां फ्यूजन नहीं हुआ है तो ये पूरी की पूरी वॉल जो है ये शेड कर जाती है, और इसी से लड़कियों के अंदर मेंस्ट्रुएशन होती है। और ये जो मेंस्ट्रुएशन हो रही है वो निकल जाती है बॉडी से ब्लड के रूप में। कहाँ से निकलती है? सर्विक्स जैसी ओपनिंग दिख रही होगी आप लोगों को, यूट्रस की ओपनिंग जो है वो सर्विक्स है। उसके बाद एक कनाल लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है, उसे सर्विकल कनाल कहते हैं। और फाइनली वजाइना से ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है ये बाहर निकल जाता है।
तो ये तो बात हुई कि अगर वहां पर फ्यूजन नहीं हुआ है, अगर फ्यूजन हुआ है तो जैसा कि हमने कहा है कि जो जाइगोट है वो कहाँ बनता है, ओविडक्ट में या फिर फेलोपियन ट्यूब में बनता है। तो फेलोपियन ट्यूब में ही जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है, तो वहीं से वो डिवीजन स्टार्ट कर देता है। तो जैसे जैसे सेल डिवाइड करने लगता है तो नया स्ट्रक्चर बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है वो मूवमेंट करता हुआ यूट्रस में आ जाता है। यूट्रस में आ करके वो अटैच हो जाता है यूट्रस से, जो अपर स्ट्रक्चर है, ऊपर वाला सबसे जो आप लोगों को टॉप का स्ट्रक्चर दिख रहा है उससे अटैच हो जाता है, और वहां पर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बेसिकली कनेक्शन है बिटवीन मदर एंड द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो और माँ के बीच में जो कनेक्शन होता है उसे प्लेसेंटा कहते हैं। और इस कनेक्शन की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ है उसको नरिशमेंट चाहिए, उससे जो वेस्ट निकल रहे होंगे उसको रिमूव करना होगा, उसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी होगी। तो ये सभी चीजें जो है वो मदर की बॉडी से इस्तेमाल करता है, उसे जो ऑक्सीजन चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो खाने की चीजें चाहिए, वो सब की सब वो अपनी मदर की बॉडी से लेता है, और जो वेस्ट उसे रिमूव करवाना है वो भी प्लेसेंटा के थ्रू, उस कनेक्शन के थ्रू जो उसकी माँ के साथ उसका बना हुआ है, उसको अपने वेस्ट को वो रिमूव करता है। तो ये जो प्लेसेंटा है, जो कनेक्शन है बिटवीन एम्ब्रियो एंड द मदर, वो किस तरीके से बनता है। एम्ब्रियो के साइड में तो विलाई लाइक स्ट्रक्चर, आप लोगों को पता है विलाई क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होती हैं वो बनी हुई होती हैं। तो विलाई लाइक स्ट्रक्चर तो एम्ब्रियो की साइड से बनती हैं, और मदर की साइड से उस विलाई को ब्लड से घेर दिया जाता है, पूरी तरीके से ब्लड से घेर दिया जाता है, ताकि जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो ब्लड से ही सप्लाई होते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई भी ब्लड से ही होती है, तो सारे की सारी सप्लाई जो है वो आसानी से हो पाती है, सिंपल डिफ्यूजन से हो पाती है, और वो अलग एक्टिव यानी कि एनर्जी यूज करके भी जो न्यूट्रिएंट्स है उनको पहुंचाया जाता है, हर तरीके से किसी भी तरीके से न्यूट्रिएंट्स को एम्ब्रियो तक पहुंचाया जाता है, ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है, वेस्ट मटेरियल का रिमूवल किया जाता है थ्रू प्लेसेंटा। ये विलाई लाइक स्ट्रक्चर जो है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उसे विलाई कहते हैं। तो विलाई के होने की वजह से क्या होता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि विलाई फिंगर जैसा होगा तो टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके का स्ट्रक्चर बना है जिसे हम विलाई कह रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जितने भी चाहिए एम्ब्रियो को वो डिराइव करता है, प्राप्त करता है फ्रॉम दी मदर्स बॉडी। उसके बाद इसी तरीके से प्लेसेंटा से नरिशमेंट प्राप्त करते करते एम्ब्रियो जो है उसमें डेवलपमेंट होती है, उसके ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, उसके बॉडी पार्ट्स मैच्योर करने लगते हैं, हैंड्स, लेग्स, हेड, सब का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये सारा फॉर्मेशन करते करते जो बेबी है उसको 9 मंथ अप्रोक्सीमेटली लगते हैं, और 9 मंथ जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं तो एक सिग्नल बॉडी को, मदर की बॉडी को भेजा जाता है कि जो उनके अंदर बच्चा पल रहा है उनकी कोख में, उनकी यूट्रस में, वो अब फुली मच्योर्ड है और उसे बाहर निकालने की जरूरत है। तो ऐसे में यूट्रस के अंदर बहुत वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस यानी कि सिकुड़ना फैलना, इस तरीके से यूट्रस में बहुत ज्यादा मूवमेंट होने लगती है, जिसकी वजह से जो बेबी है फाइनली उसे बाहर निकाला जाता है, बेबी का बर्थ कराया जाता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक में आपको बोला व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, तो हम लोगों ने थोड़ी बहुत इसमें बात कर ली है, जो 2-3 बातें रह गई हैं वो बता देते हैं कि हमने बात की हुई है कि अगर एग फर्टिलाइज ना हो, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट सेम टाइम पर ओविडक्ट में ना पहुंचे तो वहां पर फ्यूजन नहीं होता। तो वहां पर क्या होता है कि एग कम से कम 1 दिन तक वेट करता है फीमेल गैमेट के उसके तक पहुंचने का, ओविडक्ट में ही एग रुका रहता है और वहां पर वो फीमेल गैमेट जो है एग है वो वेट करता है मेल गैमेट के लिए। लेकिन अगर 1 दिन तक भी मेल गैमेट वहां नहीं पहुंचते हैं तो ऐसे में जो एग है वो मूव करता हुआ कहाँ आ जाता है, यूट्रस में। अब यूट्रस जो है वो सोच के चलता है कि फर्टिलाइजेशन होने वाला है, तो इसीलिए वो खुद को प्रिपेयर करता है बाय मेकिंग इट्स इनर वॉल थिक। तो यूट्रस जो है वो अपनी अंदर की वॉल को थिक और स्पॉन्जी बना देता है, क्योंकि वो सोचता है कि इसकी रिक्वायरमेंट होगी जाइगोट को या फिर एम्ब्रियो को नरिशमेंट लेने के लिए इन केस अगर फर्टिलाइजेशन हुई है। लेकिन अगर वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं है तो उसकी नरिशमेंट की या फिर उस वॉल की जो यूट्रस ने बनाई है उसकी जरूरत नहीं है, तो इसकी वजह से जो वॉल है वो ब्रेक करने लगती है धीरे धीरे करके, और सारा का सारा ब्लड से ही, क्योंकि वहां पर वॉल बनाई गई थी इसलिए वो ब्लड के रूप में पूरी की पूरी वॉल जो है वो बाहर निकाल दी जाती है फ्रॉम वजाइना, थ्रू वजाइना। एंड दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन. और मेंस्ट्रुएशन एवरी मंथ होते हैं, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि एवरी मंथ जो प्रोसेस है वो सिमिलर प्रोसेस रिपीट किया जाता है इनसाइड द फीमेल इंडिविजुअल्स बॉडी. और यहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है उसको बॉडी से कम्प्लीटली निकालने में 2 से 7 या 8 दिन लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितनी मोटी वॉल बनी है और कितना सारा ब्लड निकाला जाना है. तो मेंस्ट्रुएशन लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days. उसके बाद यहाँ पर हम ये टॉपिक पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप स्टूडेंट्स के लिए. नॉट जस्ट बिकॉज एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट आप लोगों को इसके लिए अवेयर रहने के लिए भी ये टॉपिक जरूर पढ़ना चाहिए. तो यहाँ पर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे. देखो, आप लोगों ने पढ़ा है कि जो बच्चे होते हैं, यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं, बेसिकली फीमेल और मेल इंडिविजुअल्स जो हैं, इनकी बॉडी के अंदर क्या है, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, रिप्रोडक्टिव चेंजेस हो रहे हैं, ताकि ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाएं. अब ये चेंजेस आपके अंदर हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसी एज में सेक्सुअल एक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. आपके अंदर ये मैच्योरेशन होने का प्रोसेस अभी तो चल रहा है, तो इसलिए आपको इस एज में, जिस एज में आप अभी हैं, उसी एज में आपको सेक्सुअल एक्ट में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं होती. इस एज के अंदर आप लोगों को अट्रैक्शन फील हो सकता है टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स, यानी कि आप लोगों को जो, अगर आप लड़की हैं तो आपको लड़कों की तरफ आकर्षण हो सकता है, अगर आप लड़के हैं तो आपको लड़कियों की तरफ आकर्षण हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ हॉर्मोन्स की वजह से है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को कुछ सेक्सुअल एक्ट में पार्टिसिपेट करना है विद ऑपोजिट इंडिविजुअल्स, ऑपोजिट जेंडर के इंडिविजुअल्स के साथ आपको किसी तरीके की कोई संबंध बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके अंदर ये सोच पैदा हो रही है ये हॉर्मोन्स की वजह से हो रही है. हो सकता है आप लोगों को अपने फ्रेंड्स की तरफ से दबाव आ रहा हो सकता है आप लोगों को अपनी फैमिली की तरफ से दबाव आ रहा हो कि आप शादी कर लें और बच्चे पैदा करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस करेक्ट एज में हैं कि आपको यू शुड गेट मैरिड एंड गिव बर्थ टू चाइल्ड. बिकॉज इस एज में भी आप लोगों के अंदर तो प्रोसेस चल रहा है कि आप लोग बाद में जाकर मैच्योर हो जाएं, और इसमें इस वक्त आप लोगों का ना माइंड तैयार हुआ होता है, ना आपकी बॉडी पूरी तरीके से तैयार हुई होती है कि आप एक नए लाइफ को बर्थ दें, एक नए इंडिविजुअल को बॉडी के अंदर उसको पालना, उसका डेवलपमेंट कराने में बहुत सारी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज कर ली जाती है. आपकी बॉडी से बहुत सारा नरिशमेंट उस बेबी को दिया जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी बहुत वीक हो सकती है. तो इसीलिए जो आपकी बॉडी ही अगर फुल्ली मैच्योर नहीं होगी, तो आपकी जो बेबी आप अंदर डेवलप करा रहे होंगे अपनी बॉडी के अंदर, उसको भी बहुत नरिशमेंट नहीं मिलेगी, वो भी एक कमजोर बेबी होगा. साथ में इस एज ग्रुप में, जिस एज ग्रुप में आप हैं, इस एज के बच्चों का माइंड भी फुल्ली तैयार नहीं होता है टू कंसीव. तो इसीलिए आप लोगों को अगर कहीं से भी प्रेशर आ भी रहा है, आपको फैमिलीज फोर्स कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स फोर्स कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को इन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए. हो सके तो इस बारे में अपने टीचर्स से बात कर सकते हैं आप लोग, या फिर कोई बड़ा व्यक्ति जो आपकी बात समझता हो उससे बात कर सकते हैं. क्योंकि ना सिर्फ कंसीव करना आपकी बॉडी की बहुत सारी एनर्जी को खर्च कराएगा, बल्कि अगर आप किसी ऐसे सेक्सुअल एक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे आप लोगों को लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज ले लेने का भी खतरा होता है. आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही आपके जीवन के लिए खतरनाक बीमारी आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है. जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि सेक्सुअल एक्ट के दौरान अगर आपकी बॉडीज कॉन्टैक्ट में आ रही हैं, तो उसकी वजह से जो इन्फेक्शंस हैं, जैसे कि सिफिलिस या फिर गोनोरिया, ये जो इन्फेक्शंस हैं वो सेक्सुअल एक्ट में पार्टिसिपेट करने की वजह से फैल जाती हैं, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक पहुंच जाती हैं. गोनोरिया और सिफिलिस तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कुछ लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन जिससे डेथ बिल्कुल ही कंफर्म होती है, जैसे कि HIV का वायरस अगर बॉडी में ट्रांसफर हो जाए फ्रॉम एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, तो उससे डेथ बिल्कुल ही श्योर हो जाती है, क्योंकि HIV का कोई क्योर नहीं है. और HIV का ट्रांसफर तभी होता है, सेक्सुअल एक्ट की वजह से होता है या फिर इन्फेक्टेड सिरिंज यूज करने से होता है. तो यहाँ पर सेक्सुअल एक्ट को आप ना करें, क्योंकि इससे आप लोगों को लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज प्राप्त करने का चांसेस बढ़ जाता है. तो ये जो जानकारी थी ये आप लोगों को अभी यूज करने के लिए थी, बाकी की आप लोगों को यही एडवाइस किया जा रहा है कि आप इस तरीके के किसी भी सेक्सुअल एक्ट में पार्टिसिपेट ना करें. और बाकी की जो जानकारी यहाँ से अब दी जा रही है वो आपके फ्यूचर यूज के लिए दी जा रही है, जिसमें आप लोगों को ध्यान से वो भी सुननी है। जैसे कि अगर आप लोग अपने किसी पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उस वक्त अगर आप इन इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं, HIV के इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं, तो मेल इंडिविजुअल्स एक कवरिंग यूज कर सकते हैं विच इज कॉल्ड कॉन्डोम। तो इसका यूज किया जा सकता है। कॉन्डोम एक कवरिंग है जो कि पेनिस वाले एरिया में इसको यूज किया जाता है। इट इज हेल्पफुल टू प्रिवेंट इन्फेक्शन टू सम एक्सटेंट। मतलब पूरी तरीके से तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक इससे इन्फेक्शन से प्रिवेंशन मिल जाता है। उसके बाद सेक्सुअल एक्ट जो होता है, इससे प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अगर प्रेगनेंसी अवॉइड की जानी है, क्योंकि प्रेगनेंसी जो है ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग एक इवेंट है जिसमें बॉडी बहुत ही ज्यादा परिश्रम करती है, साथ में माइंड जो होता है वो भी बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा होता है, उसमें भी बहुत प्रेशर होता है कि जो बेबी है उसकी अच्छे से देखभाल की जाए। तो ये एक बहुत ही डिमांडिंग एक इवेंट है, तो इसीलिए अगर प्रेगनेंसी अवॉइड की जानी है तो उसके लिए भी बहुत सारे मेथड्स हैं। और ये मेथड्स जो हैं अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। सबसे पहली कैटेगरी है मैकेनिकल बैरियर बनाना, एक ऐसा बैरियर बनाना जिससे कि मेल गैमेट्स का ट्रांसफर ही ना हो पाए फीमेल बॉडी के अंदर। तो अगर आप सेक्सुअल एक्ट में पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं, तो उस वक्त भी क्या होगा कि मेल गैमेट्स का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा फ्रॉम द मेल बॉडी टू द फीमेल बॉडी। और यहाँ पर मैकेनिकल बैरियर यूज करके आप ये कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं द एंट्री ऑफ मेल गैमेट्स। तो जैसे कि बात की थी हम लोगों ने कॉन्डोम्स की, तो कॉन्डोम्स का यूज मेल्स भी कर सकते हैं, फीमेल्स भी कर सकती हैं, और दोनों की जो कवरिंग्स है अलग अलग आती हैं, तो उनको वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि इससे एक मैकेनिकल बैरियर मिलता है और मेल गैमेट्स की एंट्री प्रिवेंट की जा सकती है। ये जो अलग अलग मेथड्स हैं टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, इन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स कहते हैं, और इन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स में से पहली कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर क्या है, मैकेनिकल बैरियर। दूसरी कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेजर होती है वो क्या होती है, हार्मोनल, जो आप लोग हार्मोन्स हैं अगर उसी को चेंज कर देंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो एवरी मंथ ओवरीज एग प्रोड्यूस करती हैं, तो अगर हार्मोनल चेंज कर देंगे तो उससे एग का प्रोडक्शन ही नहीं होगा, और एग का प्रोडक्शन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होगी। और ये जो हार्मोन्स है इसको जरूरी नहीं कि आप लोग मुंह से ही लेंगे, दवा के रूप में लेंगे, किसी और तरीके से भी आप लोगों को ये हार्मोन्स बॉडी में इंजेक्ट किए जा सकते हैं। तो हार्मोनल चेंज कराकर भी आप लोग अब प्रेगनेंसी जो है उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, पर इसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, क्योंकि आप बॉडी के अंदर उसके मैकेनिज्म के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, आप हार्मोन्स को बदल रहे हैं। हार्मोन्स ही बेसिकली आपकी बॉडी को कंट्रोल करती है, आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस नजर आते हैं हार्मोन्स की वजह से नजर आते हैं। तो अगर आप हार्मोनल चेंजेस करेंगे बॉडी के अंदर तो उससे साइड इफेक्ट्स होने के बहुत चांसेस होते हैं, तो इसीलिए हार्मोनल मेथड जो है वो यूज ना करना ही बेहतर होता है। तो जो हार्मोनल मेथड है, या तो इसे आप मुंह से दवा के रूप में ले सकते हैं या फिर इंजेक्ट भी किए जा सकते हैं हार्मोन्स, लेकिन कॉमनली इसे मुंह के रास्ते ही दवा के रूप में लिया जाता है। एक और मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है, उसमें क्या किया जाता है कि यूट्रस के अंदर कॉपर टी नाम का एक डिवाइस जो है उसे लगाया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है। तो कॉपर टी या फिर लूप, ये डिवाइसेस हैं जिन्हें यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया जाता है, जिससे कि जो प्रेगनेंसी है उसे प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन फिर से ये भी एक साइड इफेक्ट कॉज करने वाला मेथड है। उसके बाद लास्ट मेथड जिसके बारे में आपको पढ़ना है वो है सर्जिकल मेथड। नाम से आप लोगों को पता लग रहा है कि यहाँ पर सर्जरी परफॉर्म की जानी है। अभी देखो, जो मेल गैमेट्स हैं उनका ट्रांसफर कैसे होता है, उनका ट्रांसफर होता है टेस्टिस से वास डिफरेंस में वो पहुंचते हैं, और वास डिफरेंस से आगे वो मूव करते हुए यूरेथ्रा से फीमेल बॉडी के अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कनेक्शन ही काट दिया जाए बिटवीन वास डिफरेंस एंड टेस्टिस, तो वहां पर मेल गैमेट्स का ट्रांसफर टेस्टिस से वास डिफरेंस में नहीं हो पाएगा, और जिसकी वजह से वो आगे भी मूव नहीं कर पाएगा। तो सर्जिकल मेथड में क्या किया जाता है, सर्जरी करके वास डिफरेंस और टेस्टिस के बीच का जो कनेक्शन है उसे कट कर दिया जाता है, ताकि मेल गैमेट्स का ट्रांसफर ही टेस्टिस से वास डिफरेंस में ना हो पाए। और अगर ट्रांसफर ही नहीं होगा तो सेक्सुअल एक्ट करने के बावजूद भी प्रेगनेंसी प्रिवेंट की जा सकती है। इसी तरीके से फीमेल इंडिविजुअल्स में भी अगर ओवरीज और जो यूट्रस है वहां से उनके बीच में कनेक्शन क्या है, फेलोपियन ट्यूब, तो अगर ओवरीज से जो एग निकल रहा है उसका ट्रांसफर ही नहीं करने देना है इनसाइड यूट्रस, तो उसके लिए क्या करना होगा, फिलोपियन ट्यूब को ही कट कर देना पड़ेगा सर्जरी करके। तो सर्जरी करके फिलोपियन ट्यूब को फीमेल इंडिविजुअल्स के अंदर कट कर दिया जाता है और उसे फोल्ड करके बांध दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो एग है वो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो ये तो सर्जिकल मेथड्स है। अब देखो सर्जिकल मेथड्स जो है वो बहुत लंबे समय तक इसको प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि एक बार सर्जरी हो जाएगी तो फ्यूचर में कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन सर्जिकल मेथड से भी नुकसान होने के चांसेस ये है कि अगर मान लो आप दोबारा कंसीव करना चाहते हो, प्रेगनेंसी कराना चाहते हो, तो आप नहीं करा सकते। तो आपको ये जो स्टेप है ये बहुत सोच समझ के लेना होता है। साथ ही में सर्जरी की जा रही है तो इससे कॉम्प्लिकेशंस थोड़े बहुत होने के चांसेस भी होते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत हद तक हटाए जा सकते हैं, अवॉइड किए जा सकते हैं अगर किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से सर्जरी करवाई जाए। ऐसे ही किसी अनप्रोफेशनल व्यक्ति से अगर आप सर्जरी करवाएंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, सर्जरी खराब होने के चांसेस हैं, जो ऑपरेशन है उसके बिगड़ने के चांसेस हैं। तो इसीलिए आप लोगों को एडवाइस किया जाता है कि आप जो सर्जरी करवाएं वो किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से ही करवाएं। अगर ये सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स अपनाने के बावजूद भी प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसको भी सर्जरी करके अबॉर्ट किया जा सकता है, सर्जिकल अबॉर्शन किया जा सकता है। लेकिन देखा जाता है कि सर्जिकल अबॉर्शन का इंडिया में काफी बार मिसयूज किया जाता है, क्योंकि जो फीमेल चाइल्ड है, अगर माँ की वूम्ब में फीमेल चाइल्ड है तो उसका पता लगा करके फीमेल फिटिसाइड यानी कि फीमेल फीटस यानी कि जो कोख के अंदर बेबी होता है उसे फीटस कहते हैं, तो फीमेल फीटस को मारने के लिए अबॉर्शन करा करके, सर्जरी करा करके अबॉर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मिसयूज किया जाता था काफी लंबे समय से, लेकिन जब से इंडियन गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया है जिसमें फीमेल फीटस का अबॉर्शन करवाना एक कानूनी जुर्म है, तब से काफी हद तक डिक्लाइन हुआ है फीमेल फिटिसाइड्स में। यानी कि जन्म से पहले जो बच्चियों को मार दिया जाता था माँ के वूम्ब में ही, उसमें काफी हद तक कमी देखी गई है जब से कानून बना है, क्योंकि माँ के कोख में ही बच्चियों को मार देने से बहुत नुकसान होता है, बिकॉज जो सेक्स रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, मेल फीमेल सेक्स रेशियो है जो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। और इसी को ध्यान में रख करके प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, यानी कि जन्म से पहले ही किसी बच्चे का जेंडर पता करना इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, ये एक कानूनी जुर्म है। उसके बाद आप लोगों को ये भी पता है कि इतनी सारी मेजर्स लेने के बावजूद भी हमारी कंट्री में पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से पॉवर्टी भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन होने से बजट जो आता है सरकार का वो इम्प्रूव करने के लिए, किसी व्यक्ति की जो जीवन जीने की स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करने के लिए कितना भी यूज करें, पॉपुलेशन अगर ज्यादा होगा तो वो कम पड़ जाएगा, और इसकी वजह से गरीबी ज्यादा बढ़ेगी, पॉवर्टी ज्यादा बढ़ेगी। तो पॉपुलेशन का इतना ज्यादा बढ़ना भी किसी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होता है। एक कंट्रोल्ड लेवल में पॉपुलेशन अगर रहे तो सभी लोग अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। और यहीं इसी के साथ में आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। आपके कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड पेज नंबर 140 पर हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे। आपको क्या करना है, आपने जो आज पढ़ा है उसे रिवाइज कर लेना है। कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत आए तो आपको अपने टीचर से जरूर पूछनी है। कोई भी दिक्कत आती है पढ़ाई से रिलेटेड या फिर किसी और तरीके की दिक्कत, तो भी आप लोगों को अपने टीचर से बात जरूर करनी चाहिए, नहीं तो अपने फ्रेंड्स से बात करिए जो आपके आसपास हैं, जो आपकी बात समझते हों। तो आप लोगों को डिस्कस जरूर करनी चाहिए चीजें, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कई बार हो सकता है कि सोल्यूशन आपके प्रॉब्लम का आपके पास ना हो, कोई और आपको सोल्यूशन दे सकता है, बेहतर सोल्यूशन दे सकता है, तो आप डिस्कशन करें तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। बाकी इसी के साथ में आज की क्लास को खत्म कर रही हूँ, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।